दशम स्कंद के 29वें अध्याय से पढ़ रहे हैं। श्री बादरायणी उवाच भगवान पिता रात्रि शारदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षम रन्तु मनश्चक्रे योगमायाम उपाश्रितः। श्री बादरायणी उवाच भगवान पिता रात्रि शारदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षम रन्तु मनश्चक्रे योगमायाम उपाश्रितः। श्री बादरायणी उवाच भगवान पिता रात्रि शारदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षम रन्तु मनश्चक्रे योगमायाम उपाश्रितः। श्री बादरायणी व्यासदेव जी ने कहा, श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान है, फिर भी खिलते हुए चमेली के फूलों से महकती हुई उन शरदकालीन रातों को देखकर उन्होंने अपने मन को प्रेम के विचार में मोड़ लिया। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति का उपयोग किया। तात्पर्य, जो ही भगवान कृष्ण के सुंदर युवती के साथ प्रेम नृत्य अथवा रास नृत्य की सुप्रसिद्ध कथा आरंभ करते हैं, तो सामान्य लोगों के मन में शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि में अनेक युवतियों के साथ ईश्वर के इस प्रेममय नृत्य के औचित्य के विषय में विविध प्रश्न उठते हैं। श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तक भगवान श्री कृष्ण में भगवान के रास नृत्य का वर्णन करते हुए इसकी आध्यात्मिक पवित्रता की व्याख्या की है। कृष्ण भावनामृत में उन्नत आचार्यों का इस विषय में कोई संदेह नहीं है कि भगवान कृष्ण पूर्ण और आत्मसंतुष्ट हैं और उन समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं जिन्हें एक प्रकार से अपूर्णता का सूचक माना जाता है। भौतिकतावादी व्यक्ति श्री कृष्ण के दिव्य स्वभाव की प्रामाणिक व्याख्या को बुरी तरह से अस्वीकार करते हैं। किसी ऐसे परम पुरुष की उत्तम वास्तविकता को जो नितांत प्रेम में कार्य संपन्न कर सकता है, उसको अस्वीकार करना तर्कयुक्त प्रतीत नहीं होता, जबकि हमारा तथाकथित प्रेम कार्य विकृत उसका प्रतिबिंब है। भौतिक कार्यकलाप ईश्वर द्वारा संपन्न पूर्ण आध्यात्मिक कार्यों का प्रतिबिंब ही हो सकता है, भौतिक कार्यकलाप ईश्वर द्वारा संपन्न पूर्ण आध्यात्मिक कार्यों का प्रतिबिंब नहीं हो सकता। इस पर अड़े रहना उन लोगों के लिए अकल्पनीय और उनकी दुर्दैवी भाव दशा का दर्शन कराता है, जो श्री कृष्ण की वास्तविकता का विरोध करते हैं। अभक्तों की ये मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति दुर्भाग्यवश ईर्ष्या के रूप में उमड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे परम पुरुष के अस्तित्व को जोर शोर से नकार देते हैं, क्योंकि अधिकांश निर्विशेषवादी आलोचक अपने ही प्रेम आलापों का अनुभव करते हैं और उसे भी आध्यात्मिक मानते हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज सबका शरद उत्सव के सुंदर पावन बेला पर सबका स्वागत है और मनुष्य जाति के लिए सर्वश्रेष्ठ वरदान श्री दामोदर मास का आरंभ आज हो रहा है। इस सुंदर समय पर आप सबके सानिध्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मनुष्य जीवन जो है वो हर तरह से दुख से भरा हुआ है। कई प्रकार के दुख ऐसे होते हैं जो बोल नहीं सकते हम किसी को भी बोल नहीं सकते। कुछ दुख बोल सकते हैं, लेकिन विविध प्रकार के सूक्ष्म और स्थूल दुख कष्ट पीड़ा यातना से हमारा जीवन भरा हुआ है। जिस वक्त ये बात हमें समझ में आती है तो भाग्य का उदय होना आरंभ होता है। जब तक जीव को ये पता नहीं चलता है कि हमारे जीवन में दुख है, तब तक वो दुर्भाग्य बना रहता है उसका। और ऐसे दुर्भाग्य की स्थिति को देखते हुए भगवान को भी बड़ी दया आती है और वो नाना प्रकार के विकल्पों को लेकर बार बार आते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि हम जैसे भटके हुए जीवों को कुछ रास्ता प्राप्त हो। अलग अलग प्रकार के उपाय करते हैं, शास्त्रों को भेजते हैं, अपने संतों को भेजते हैं, अपने नाम को भेजते हैं, अपने धाम को अवतरित कराते हैं, खुद आते हैं, लीला करते हैं, नदियों को उत्पन्न करते हैं, पर्वतों को उत्पन्न करते हैं जो हमारी आत्मशुद्धि के लिए बहुत सहायता करते हैं। और सबसे ऊंची उनकी भेंट हमारे लिए जो है तारण करने के लिए वो है प्रामाणिक संतों का संग। उससे बड़ी उनकी कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है। और इन प्रामाणिक संतों के द्वारा वो ऐसे महान दिव्य वस्तुओं को प्रकाशित करते रहते हैं, जैसे कि दामोदर मंथ, दामोदर मास ये मनुष्य जाति के ऊपर भगवान की अनंत कृपाओं में से एक श्रेष्ठ कृपा है। क्योंकि जीव जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे और आलसी होते जा रहा है और बुद्धि उसकी भ्रष्ट होते जा रही है। वातावरण इतना दूषित हो रहा है कि केवल पतन और क्या कहते हैं डिग्रेडेशन को क्या बोलते हैं अधोपतन चलते रहता है। निरंतर नीचे की ओर मनुष्य जाति जा रही है, यहां तक कि जानवर से भी प्रतियोगिता कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जानवर से भी बढ़कर कैसे हम बने। तो ऐसे स्थिति में सामान्य व्यक्ति को क्रोध आएगा, दंड देने का भाव आएगा मन में कि चलो कोई लोग दंड कोई अपराध करे तो सिपाही जो है और दंड देता है उसको ताकि वो सुधर जाए। लेकिन भगवान एकदम उल्टा काम करते हैं, जैसे ही लोग पतित हो जाते हैं भगवान और दयालु हो जाते हैं। जितने पतित लोग बनने का प्रयास करते हैं उतने अधिक भगवान दयालु बन जाते हैं। तो उस दृष्टि से हमारे सब लोगों की भौतिक दुनिया की पतित अवस्था को देखते हुए ये जो दामोदर मास की भेंट है भगवान की, ये उनकी अनंत दया का एक प्रमाण है। और उसकी विशेष बात यह है कि इस महीने में नाम तो दामोदर जी का है लेकिन इसके लिए फल राधा रानी देती है, ये इसकी विशेष बात है। ये महीना भगवान के दामोदर लीला से प्रसिद्ध है। सब जानते हैं भगवान को यशोदा माई ने उधर से दोरी से बांध दिया था प्रेम से, इसको कोई दुनिया की कोई शक्ति बांध नहीं सकती है सिवाय प्रेम के, उनको प्रेम की शक्ति से बांध दिया उन्होंने। तो ये राधा रानी को इतना प्रिय है ये महीना कि वो स्वयं इस महीने में किए गए कार्यों को फल देती है। और जब वो फल देती है तो वो ऐसे गिना चुना फल नहीं होता है, तो प्रचुर मात्रा में वर्षा होता है उसका, कई लाखों गुना उसका परिणाम प्राप्त होता है दामोदर मास में किए हुए आध्यात्मिक कार्यों के लिए। और ये महीने की शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है, अश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा गया है, महाराष्ट्र में उसको कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। और इस दिन के सुंदर लीला के माध्यम से ये महीना आरंभ हो जाता है और ये महीना भगवान के अनंत लीलाओं से भरा हुआ है। और विशेष करके जब भगवान की दिव्य लीलाएं हैं परम पुरुषोत्तम की जो अतुलनीय हैं, तो कोई तुलना नहीं हो सकती, उसमें भी बाल लीलाओं से भरा हुआ महीना ये, इसी में माखन की चोरी हुई है, इसी में भगवान ने अपने तोतले तोतले बोल बोलना शुरू किया है, इसी में वो ब्रज रज में रेंगते थे, इसी में वो गोबर और गोमूत्र के मिश्रण में पेट के बल पर यात्रा करते थे, गाय बैल के बछड़ों का पूछ पकड़ के लीला करते थे, अनंत आनंद दिया उन्होंने। इति दृक्स्व लीलाभिर आनंद कुंडे स्वगोचम निमाज्जंतम आख्यापयंतम, अनंत आनंद के सागर में उन्होंने ब्रजवासियों को डुबा दिया, केवल दो बूंद अमृत को स्वाद नहीं दिया, डुबा दिया उसके अंदर पूरा, इतनी कृपा है भगवान की। तो इसलिए हर मनुष्य को, हमारे सबके अंदर ये आलस्य का गुण जो है विराजमान है, चाहे कम ज्यादा अधिक मात्रा पर, उसको हम नकार नहीं सकते हैं, टाल नहीं सकते हैं, या तो अमान्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन सारे आलस्य के प्रवृत्ति को नाश करते हुए इस महीने में बुद्धिमान व्यक्ति को उत्साह से व्रत करने में भाग लेना चाहिए। क्योंकि आलस्य का मतलब क्या होता है कि अरे क्या अभी 1 करोड़ रुपया वीटी में मिलने वाला है, यहाँ से भी कौन जाएगा वीटी में धूप में, इस प्रकार के आलस्य को हम अपनाते हैं ना। 1 रुपया देकर हमको 1 करोड़ रुपया मिलने वाला है, फिर भी हम बोलते भी कौन जाएगा इतना दूर। ऐसे व्यक्ति को भी इस महीने में अपने उस आलस्य को छोड़कर पूरी शक्ति के साथ, उत्साह के साथ, उत्साही भक्तों के संग के साथ कुछ ना कुछ व्रत जरूर लेना चाहिए। क्योंकि जो आम तौर पर आपको 1 रुपया देने पर 1 रुपया मिलेगा, ऐसा जो प्रमाण है कार्यों का और फल का, वही 1 रुपया देकर 1 करोड़ रुपया की तरह कार्य कार्तिक में हो जाता है। तो 11 महीने में कितने भी आलसी होंगे, फिर भी ये महीने में सारा आलस्य छोड़कर कार्य करना चाहिए। क्योंकि छोटे छोटे कार्यों को प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक कृपा राधा रानी बैठी है वर्षाव करने के लिए, आतुर है। हम जितने उन फलों को लेने में आतुर नहीं है, हमको जितना उन फलों के प्रति प्रेरणा नहीं है, उससे कई गुना अधिक प्रेरणा और उत्साह राधा रानी को है हमारे ऊपर वर्षाव करने के लिए। और क्या कहती है वो कि कार्तिक के महीने में जो व्रत करता है वो एक बार भी एक कार्तिक का भी व्रत करेगा एक पूरे जीवन में, तो भी जीवन के अंत में भगवत धाम को प्राप्त करेगा। ऐसी कृपा मतलब इट्स लाइक इलॉजिकल है वो, उसका कोई प्रपोर्शन का कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। इसलिए उसको अकारण कृपा कहते हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई उसके तुल्य बल कार्य नहीं है जिसके अगेंस्ट वो कृपा की जा रही है, वो तो करना है इसलिए कर रहे हैं। जैसे माता पिता अपने बालक कितने भी गुनाह करते हैं, कितना अपराध करते हैं, कितना उनका दुख देते हैं उनको, फिर भी वो कैसा उनका वर्षाव रहता है, अकारण रहता है। कुछ भी हो जाए तभी माता पिता का बालक के प्रति प्रेम जो है ना वो कभी घट नहीं सकता है, कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो राधा रानी जगन माता है, विश्व माता है, सबके ऊपर दया करने के लिए आई है वो, दया की देवी, कृपा की देवी, वात्सल्य की देवी, प्रेम की देवी, करुणा की देवी है वो। वृषभानु नंदिनी करुणा मई राधे, तो इनकी कृपा का वर्षाव का महीना ये, इसलिए से झुकना नहीं चाहिए। संक्षेप में आपको बताएंगे व्रत के बारे में। व्रत वो चीज है जो कृष्ण के और भक्तों के आनंद के लिए किया जाता है। व्रत में थोड़ा बहुत कष्ट होना चाहिए, एकदम आराम से करने वाला व्रत को व्रत नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत कष्ट उसमें, थोड़ी उसकी पिंच होना चाहिए। और व्रत में सातत्य होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मूड आया तो 4 नियम 4 मालाओं का व्रत किया और कल तो फिर मूड नहीं था नहीं किया, फिर परसों 8 माला का व्रत किया, ऐसे नहीं। जो भी व्रत है वो सातत्य पूर्णता से, थोड़े बहुत कष्ट से, भगवान के उनके भक्तों के आनंद के लिए करना चाहिए। तो व्रत एकदम सादे से सादा, मतलब केवल तुलसी को जल देना रोज इस महीने में 30 दिन के लिए, ये भी व्रत हो सकता है। इतना सिंपल भी व्रत हो सकता है। एक दीपक भगवान को दिखाना है घी वाला, भगवान विष्णु को और कृष्ण को, ये भी सुंदर व्रत हो सकता है। ये इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग व्रत लेने भी हम लोग कितना सोचते हैं इतना विचार करते हैं क्या करें क्या करें क्या करें, 15 दिन से सोच रहे हैं क्या करें क्या करें क्या करें। तो ये भी व्रत हो सकता है। भगवान इतने दयालु हैं कि कार्तिक व्रत में जो भी वर्णन जहां जहां पुराणों में आए हैं, किधर भी ऐसा बताया नहीं है कि ये लोगों को ये करना ही है तभी वो व्रत माना जाएगा, ऐसा बताया नहीं है। वो पूरा चॉइस हमको दिया हुआ है कि क्या करना है, लेकिन लेना जरूर चाहिए। सिंपल से व्रत जो है वो इसमें लेना जरूर चाहिए, नहीं तो हमारा मनुष्य जीवन बेकार है। क्योंकि व्रत कौन कर सकता है, जानवर कर सकता है, कीटक कर सकते हैं, पंछी कर सकता है, मछली कर सकता है, पेड़ कर सकता है, कौन सी योनि व्रत कर सकती है, केवल मनुष्य योनि व्रत कर सकती है। निश्चय केवल मनुष्य योनि के लिए दिया गया है, नियम पालन शास्त्र सत्संग केवल मनुष्य के लिए दिया गया है, दामोदर मास मनुष्यों के लिए है। हाँ, मनुष्यों के छाया छत्र छाया के अंदर आश्रय के अंदर कोई जानवर होगा तो उसको भी कार्तिक का लाभ मिलेगा, लेकिन मिलेगा मनुष्य के माध्यम से ही। इसलिए अगर हम अपने आप को मनुष्य समझते हैं तो कार्तिक का व्रत जरूर करना चाहिए, अपने मनुष्यत्व को बनाए रखने के लिए ये कार्तिक व्रत करना चाहिए। और कोई भी कार्तिक व्रत जो, जैसे कोई व्यक्ति जप ही नहीं करता समझो, वो अगर 5 हरे कृष्ण मंत्र भी बोलेगा तो भी वो कार्तिक व्रत में गिना जाएगा, इस महीने में अगर 30 दिन करेगा तो। इतना सिंपल है, 5 हरे कृष्ण महामंत्र बोलने के लिए 10 सेकंड भी लगते नहीं, शायद 15 सेकंड लगते होंगे, इतना कृपा है इस महीने के अंदर। और वह हरेक मंत्र के लिए आपको लाखों गुना लाभ मिलेगा इस महीने में करेंगे तो। इसलिए कितने भी हम निर्बुद्ध होंगे, कितने भी आलसी होंगे, कितने भी अज्ञानी होंगे, इस महीने में व्रत हमको जरूर लेना चाहिए। और एक दीपक इस महीने में जो अर्पण करता है उसके सामने करोड़ों कल्पों के, सालों के नहीं बोल रहा हूं, एक कल्प जो है वो 43,20,000 साल का होता है, ऐसे करोड़ों कल्पों में किए गए पाप भी एक कार्तिक के दीपक के सामने खड़े रह सकते नहीं, नष्ट हो जाते हैं। इतनी शक्ति है इसमें। ये सब सेटिंग किसने किया हुआ है कि ऐसे होगा तो ऐसे होगा, एक कार्तिक दीपक के सामने करोड़ों कल्पों के पाप नष्ट हो जाएंगे, ये नियम भी किसने बनाया होगा ना, वही है दयालु राधा और कृष्ण, उन्होंने ये नियम बनाया। वो चाहते हैं जो हो जाता है, वो चाहते हैं कि चलो करोड़ों के जन्मों के पाप जो है वो एक दीपक में नष्ट किए जाए इस महीने में, चलो सैंक्शन डन, क्या चाहिए हमको और, इसके ऊपर और कृपा क्या हो सकती है। और वो कृपा लेने के लिए अगर हम तैयार नहीं है या हमारी बुद्धि नहीं है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसलिए आइए सब लोग आज के पवित्र दिवस पर ये निश्चय करें, अगर नहीं किया है पहले कुछ दिनों में तो आज से निश्चय करें कि आज से क्या करना है हमको, और उसमें हृदय से करें, जैसे कि कष्टपूर्वक, ऐसा कष्ट तो है उसके अंदर लेकिन उसका मन को ही पीड़ा हो रही है, मैं क्यों कर रहा हूं ये, कब समाप्त होगा कार्तिक महीना, ऐसे सब भावना से नहीं करना चाहिए। अभी कितने 29 दिन बाकी है, अभी 28 दिन बाकी है, अभी 20 दिन बाकी है, इस तरह से नहीं करना है। कष्टपूर्वक जो व्रत है वो प्रेम से करना है, जैसे रात को माता बालक को दस्त हो रहा है फिर भी प्रेम से उठकर रात को कोई गाली गलौज न करते हुए प्रेम से बालक की दस्त की सेवा करती रहती, उसी प्रेम से कृष्ण भगवान के लिए इस महीने में व्रत करना चाहिए। कार्तिक महीने में जो व्रत करता है सारे देवतागण उस व्यक्ति के शरीर में निवास करते हैं, आपको भी देवताओं का संग मिलेगा और आपके साथ संग करेगा उनको भी सब देवताओं का संग मिलेगा, क्योंकि देवता लोग ऐसे व्यक्तियों के प्रति बहुत आकर्षित रहते हैं जो कार्तिक का व्रत करता है। कार्तिक प्रति देवताओं के लिए बहुत आकर्षक वस्तु व्यक्ति है, तो हम सब लोग ऐसे दिव्य स्थिति में आ सकते हैं केवल छोटा सा व्रत कार्तिक में स्वीकार करके। इसलिए आइए सब मिलकर निश्चय करें कि छोटा या मोटा कुछ भी हो व्रत करें, और वो व्रत पब्लिसाइज करने की जरूरत नहीं, सबको ऐलान करने की जरूरत नहीं, वो आपके लिए है और आपके और भगवान के बीच में। अगर आपको अगर वो व्रत करने में सहायता करने में आपकी पत्नी की जरूरत है या काउंसलर की जरूरत है या किसी भक्त की जरूरत है तो उसको आप बताइए, ताकि आपको व्रत करने में लगातार सातत्य पूर्णता से करने में आपको प्रेरणा मिलती रहे, कोई रिपोर्ट लेता रहे आपका, तो ऐसे व्यक्ति को बताइए। लेकिन आम जनता में व्रत को ऐलान नहीं करना चाहिए। सचिनंदन महाराज ने मुझे बताया कि वो व्रत का ऐलान करने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है, इसलिए अपना व्रत अपने लिए रखना है, प्रेम से उसको पालन करना है। इस महीने में हम कुछ लाइन से बताएंगे क्या क्या हुआ है। एक तो सर्वोच्च लीला भगवान की जो है, जो जिसमें भगवान अपने अणुमात्र अंश जीवों के प्रति सर्वोच्च प्रेम प्रदान करते हैं, वो रासलीला से इस महीने का आरंभ होता है। रासलीला जो है वो एक कोई कामुकता का प्रदर्शन नहीं है, रासलीला एक जीव और भगवान के बीच में सर्वोच्च प्रेम का प्रकट क्या हो सकता है उसका एक प्रमाण है। वो भगवान भी अपने प्रिय जीवों के लिए जो शुद्ध हो चुके हैं, परम भक्ति के प्रेम के स्तर पर पहुंच चुके हैं, उनके लिए ये परम प्रेम का प्रकटीकरण करते हैं, उनके लिए मैनिफेस्ट करते हैं, वो रासलीला है। वो इस दिन में हुई है शुरुआत में। उसके बाद में राधा कुंड, श्याम कुंड जो सर्वोच्च पवित्र धाम है इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सृजन में भगवान के, राधा कुंड और श्याम कुंड के ऊपर कोई तीर्थ नहीं है, क्योंकि सारे जितने भी तीर्थ और धाम है वो राधा कुंड श्याम कुंड में विराजमान है। द्रव रूप प्रेम है राधा रानी का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो द्रवरूप वहां पर उपस्थित है, जो उसको स्पर्श करता है, स्मरण करता है, दर्शन करता है, आचमन करता है, वो राधा रानी जितनी कृष्ण को प्रिय है उतना कृष्ण को प्रिय हो जाता है। और जो वही काम करता है स्पर्श आचमन दर्शन स्मरण करने का, राधा रानी के मन में कितना प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो प्रेम भी उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। ऐसा धाम इस 8 दिन के बाद में बाहुलाष्टमी के दिन प्रकट हुआ है, रात के 12 बजे अरिष्टासुर के वध के बहाने। तो उसके बाद दीपावली का उत्सव है, दीपावली के उत्सव में नरकासुर का वध भगवान ने किया है, प्राग ज्योतिषपुर आसाम देश में नरकासुर का वध किया भगवान ने। इसी महीने में भगवान की 16,100 पत्नियों के साथ में विवाह हुआ है, तुरंत उसके बाद में, उसी दिन ने हुआ है, कुछ दिन के बाद, क्योंकि भगवान वहां से उन्होंने उनको भेजा द्वारका में अपनी 16,100 पालकियों में, फिर वहां जाकर पहुंचने के बाद में विवाह किया उनसे। फिर इसी महीने में बलि महाराज पृथ्वी पर आते हैं दर्शन करने के लिए, उनका राज्य कैसे चल रहा है, सब लोग खुशियां मनाते हैं उनको स्वागत करने के लिए बलि प्रतिपदा के दिन में। दूसरे दिन पे गोवर्धन पूजा होती है दीपावली के, भगवान ने इंद्र की पूजा ताल कर उस दिन गोवर्धन की पूजा करवाई, सबसे पहले भगवान ने इस दिन गोवर्धन की परिक्रमा करवाई, फर्स्ट परिक्रमा भगवान के नेतृत्व में हुई। उसके बाद में यानी अमावस्या के बाद में 7 दिन सप्तमी तक, 7 दिन तक, 7 रात तक वर्षा हुई, और अष्टमी के दिन गोविंद कुंड का निर्माण हुआ। और वो जो अष्टमी थी जिसमें एक समय पर गोविंद कुंड का निर्माण हुआ, उसी अष्टमी को भगवान के 5 साल होने के बाद में बड़ी गायों का जिम्मेदारी दिया गया उनको गोपा अष्टमी के रूप में। तो ये तीसरा दिन हो गया बलि प्रतिपदा। चौथा दिन में यम द्वितीया कहते हैं उसको, भाई और बहन हाथ पकड़कर यमुना जी में डुबकी लगाते हैं। और वरदान क्या है उनके लिए, जो भाई बहन यमुना जी में इस दिन में डुबकी लगाते हैं, और केवल भाई के हाथ, भाई को बहन के हाथ से प्रसाद प्राप्त होता है, वो भी गौलोक धाम को प्राप्त कर लेता है। इसलिए बुढ़ा बुढ़ी भी है 85-90 साल के भी ऐसे पकड़ पकड़ के यमुना जी में डुबकी लगाते हैं। इतने सुंदर सुंदर लीलाओं का एक पूरा संगम है इस महीने में, और सारी बाल लीला जो भगवान की है वो इसी महीने में हुई है अधिकतर। फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी विवाह का उत्सव है, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक सुंदर और घटना हुई है, कृष्ण के लिए यशोदा देवी गर्भवती कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुई थी, और कार्तिक पूर्णिमा भी रासलीला का सुंदर दिन है। ऐसे कार्तिक महीने में कहते ना खचाखच भरा हुआ है सब कृपा, एकदम कॉन्सेंट्रेट संपृक्त एक जगह पर, कितनी कृपा आप लौट सकते हो उतनी, उससे भी कई अनंत गुना कृपा इसमें अवेलेबल है, जन्म जन्मांतर की भी इतनी कृपा लौट नहीं सकते, इतनी कृपा इस एक महीने में भरी हुई है। तो इसका पूरा अगर लाभ लेना है तो क्या करना चाहिए, इसका पूरा लाभ लेना है तो इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, इंद्रियों को निग्रह करने का प्रयास करना चाहिए सबसे पहली बात। और एक होता है व्रत जो है उसको कहते हैं विधि व्रत, यानी क्या करना है आपको, आप एक माला करेंगे, तुलसी को जल देंगे, प्रदक्षिणा करेंगे, दीपक जलाएंगे, ये करने वाले व्रत हैं। और एक निषेध व्रत होता है जो कुछ नहीं करेंगे आप, जैसे कि ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, हाँ कोई बोलेंगे मीठा नहीं खाएंगे, गद्दे पर नहीं सोएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, हाँ किसी को अपराध नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी को दर्द नहीं देंगे, ये निषेध व्रत है, मतलब ये नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे। दोनों में से जो आपको सुविधाजनक है वो आपको स्वीकार करना है, लेकिन कुछ कॉमन व्रत है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए किसी का, क्योंकि उतना ही प्रमाण से उसका नुकसान इस महीने में होता है। जैसे वृंदावन धाम जो दुधारी तलवार की तरह है, देगा तो अनंत मात्रा में फल देगा, और उसमें कुछ आपने गड़बड़ कर दिया तो फिर उसका उतना ही नुकसान होगा जो बाकी महीने में नहीं होगा। इसलिए इस महीने में सावधान रहना चाहिए, लाभ तो अनंत है लेकिन नुकसान के भी अनंत चांसेस इस महीने में है, सबको सावधान रहना चाहिए। इसलिए मन को पूरी तरह से तत्पर रखने का महीना ये, जागृत और तत्पर, अवेयरनेस बी अवेयर, हाँ पूरी जागृत अवस्था में ये महीना बिताना है, क्योंकि एक एक क्षण में इतनी शक्ति है, एक तो मनुष्य जीवन के हर क्षण में उतनी शक्ति है भगवान को प्राप्त करने की, और मनुष्य जीवन का समय फिर उसकी पावर बदलती रहती है, उसमें से एक मनुष्य जीवन की पावर, समय की पावर जो है, शक्ति जो है, इस महीने में प्राप्त होती है, जो अनंत मात्रा में मनुष्य जीवन के समय की शक्ति इस महीने में प्राप्त होती है। तो हर एक क्षण शक्तिशाली है, तो सावधान रह के करना चाहिए, मन को भी संभालना चाहिए कि मन ऐसे ऐरे गहरे विचार नहीं करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक नकारात्मक विचारों को ताल देना चाहिए, जो अपराधी विचार होते हैं, जो किसी के बारे में बुरे विचार होते हैं, वो सबको टाल देना चाहिए प्रयत्न पूर्वक। उसके लिए भक्तों की सहायता लेनी चाहिए, ताकि इस व्रत का जितना हमारा पात्र है उसको जितना विस्तार कर सकते उतना विस्तारित करके पूरा उसमें कृपा भर ली जाए, जो जीवन भर के लिए पर्याप्त हो सकती है, इतनी कृपा इस महीने में प्राप्त हो सकती है। तो मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोगों का व्रत निश्चय हो और व्रत पूरी तरह से सफल हो, श्रेष्ठ भावना में, नम्र भावना में, भगवान को प्रसन्न करने वाली भावना में आप लोगों का व्रत संपन्न हो। इसलिए मैं श्री राधा गिरधारी के चरणों में प्रामाणिक प्रार्थना करता हूं। फिर संक्षेप में आज के विषय पर आएंगे। आज रासलीला का दिन है। हाँ, वैसे मेडिकल दृष्टि से देखा जाए तो मुझे याद है मेरी माता हर दिन इस साल में वो खीर बनाकर रात भर टेरेस पे बैठती थी। हाँ, इस दिन में जो चावल की खीर जिसमें कर्पूर डालकर बनाते हैं उसको चंद्र प्रकाश में रखेंगे आप, तो उसमें अमृत का आस्वादन या प्राशन करने से क्या लाभ होगा, उस प्रकार के लाभ हमारे प्रकृति के लिए होते हैं, सेहत के लिए होते हैं। और कार्तिक में तो वो शरद ऋतु में पित्त बढ़ता है, तो वो पित्त को शांत करने की शक्ति भी उस चंद्र के शीतल किरणों से प्राप्त हो जाती है। इसलिए इस दिन वो वैष्णव संप्रदाय में भी चावल की कर्पूर डाल के खीर बनाते हैं और राधा रानी को अर्पण करते हैं और महाप्रसाद के रूप में खाते हैं। तो हमारे वृंदावन धाम में मुझे याद है कि वृंदावन धाम में वो खीर बनाकर रखते हैं और वो रखकर राधा रानी को बाद में भोग लगाते हैं और फिर वो प्रसाद सबको बांटते हैं। मेडिकल बेनिफिट के साथ में एकदम संपृक्त दिव्य कृपा भी प्राप्त करा देते हैं। मैंने वो खीर पाई है राधा रानी की, वृंदावन धाम के मंदिर की। और इस दिन भगवान ने जब, जैसे क्या लिखा है ना, भगवान अपिता रात्रि ही शारदोत्फुल्ल मल्लिका, भगवान ने जैसे ही शरद के चंद्र का दर्शन किया, सब जगह पर, यहां पर एक अनुवाद थोड़ा गलत किया है, वो चमेली के फूल नहीं है, मल्लिका यानी जैस्मिन, यानी कि हमारे साउथ इंडिया में ना वो मल्लिगे नाम का फूल होता है, इसको मल्लिका कहते हैं या दोड्डो मोगरे कहते हैं, वैसे आंगन में आता है बहुत, वो मोगरा ही होता है लेकिन वो विशेष प्रकार का मोगरा होता है, उसमें आम मोगरे से 100 गुना अधिक सुगंध होती है और वो कई सैकड़ों रुपए में इतना इतना पीस प्राप्त होता है और शादियों में हमारे उसमें बहुत प्रयोग होता है उसका। तो चमेली नहीं है वो, मल्लिका यानी कि विशेष रूप की मोगरा, और इंग्लिश अनुवाद भी प्रभुपाद जी ने उसको जैस्मिन ही किया हुआ है कृष्णा बुक में। तो ये सारे फूल जो है वो पूरे वृंदावन में खिल गए और बाकी भी सारे मालती के अनंत प्रकार के फूल खिल गए। मंद मंद सुगंध जमुना जी से शीतल बाष्प को लेते हुए, फूलों की सुगंध को लेते हुए मंद मंद वायु प्रवाहित हो रही थी। तो भगवान के मन में गोपियों के साथ रमण करने की इच्छा उत्पन्न हुई। अभी लोग सोचते हैं कि ये कैसे भगवान है, इसको भगवान कैसे बोल सकते हैं, बीच रात में किसी और पराई स्त्रियों को लेकर लीला करके जा रहे हैं। तो इसलिए व्यासदेव जी शुरू के श्लोक में ही, रास पंचाध्याय के पहले अध्याय के पहले ही श्लोक में बता रहे हैं, भगवान अपि माम ताम रात्रि, कौन लीला कर रही है, सामान्य व्यक्ति नहीं कर रहा है, जो कामुक है या कश्चित जीव है, ये स्वयं भगवान कर रहे हैं। और भगवान किसको कहते हैं, जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, शे ऐश्वर्य जिनमें अनंत मात्रा में भरे हुए हैं, इसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति जो सृष्टि निर्माण करता है, गौलोकेश्वर है, जो पूर्णता विरक्त है, इनमें कोई कामुकता का लवलेश भी नहीं है, वो व्यक्ति ही लीला को संपन्न कर रहे हैं। नंबर वन सबसे पहले समझने की बात है। इसलिए इस दशम स्कंद का जो लोकेशन है वो नव स्कंद के बाद में कर दिया गया, या तो दूसरी भाषा में कहा जाए तो भगवान की लीलाओं का जो लोकेशन है वो भागवत में दशम स्कंद में दिया है, प्रथम स्कंद में नहीं दिया है। सर्वोच्च लीला है तो प्रथम स्कंद में आनी चाहिए, एक दूसरे से देखा जाए तो बेस्ट थिंग तो पहले देना चाहिए, जब आपको भूख लग रही है तो बेस्ट भोजन तभी देना चाहिए, जल्दी हजम हो जाएगा, जल्दी पोषण प्राप्त होगा, लेकिन नहीं, उसके लिए तैयारी करने के लिए 9 स्कंद दी गए। भगवान कौन है, किन किन महान लोगों ने उनकी सेवा करके परिपूर्णता प्राप्त की है, किन किन लोगों को उनकी महान भक्ति और शुद्ध भक्ति के कारण भगवान ने दर्शन दिया, उनके जीवन को धन्य किया है, वो भगवान कौन है, उनका पूरा परिचय देने के बाद में फिर भगवान के चरित्र का वर्णन आरंभ होता है। और उसमें भी 29 अध्याय होने के बाद में, 28 अध्याय होने के बाद में रास पंचाध्याय का वर्णन आता है, क्योंकि ये विशेष चीज है। फिर भी इतना सब होने के बाद भी व्यासदेव बता रहे हैं भगवान अपी, कौन कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। सबसे पहले सावधान हो जाओ किसके विषय में आप सुनने जा रहे हो, कि भगवान ही लीला करने वाले हैं। दूसरी बात समझने जा ऐसी है कि जो गोपियों के साथ ये नृत्य हुआ वो असामान्य नृत्य हुआ, इसमें ना मदर यशोदा थी, नंद महाराज थे, ना ग्वालवाल थे, ना सिदामा था, ना मधुमंगल था, केवल गोपियां। उसमें भी जो ब्रजवासी लोगों में, जो ब्रजवासी तो वैसे ही महान जीव होते हैं, जो भगवान के चुने हुए जीव होते हैं, उसमें से भी चुने हुए जीव गोपियां जो है उनको इसमें सहभाग दिया गया। और समझने वाली बात यह है, जैसे भगवान काम रहित हैं, पूर्णता शुद्ध और सच्चिदानंद विग्रह है भगवान, वैसे गोपियां भी उनके मन में कोई भौतिक लवलेश नहीं है। कोई भी गोपी वहां पर काम वासना की भोग करने के लिए वहां पर नहीं आई थी, वो 100% केवल कृष्ण भगवान को संतुष्ट करने के लिए वहां पर आई थी। अब ये सब श्रद्धा की बातें हैं, आप कहते हैं क्या बेकार की बातें कर रहे हैं, कोई ऐसा करता है क्या, जब लड़का लड़की मिलते तो क्या करते वो? तो भगवान कहते हैं अवजानंती माम मूढ़ मनुष्यम तन्माश्रितम, जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है, वो समझते हैं कि मैं उनके जैसा ही हूं जब मैं आता हूं मनुष्य शरीर धारण करके। तो भगवान ने कई जगह बताया हुआ है कि ये ज्ञान, पहले श्रद्धा की बात है और फिर ज्ञान की बात है। अगर आप अवगत हैं उस बात से तो उस लीला का परमोच्च आस्वादन आप कर सकते हैं। और गोपियां भी जब निकली है वो, तो भगवान ने पहले उसके लिए मुरली बजाई है, बंसीवट के नीचे शाखा पर बैठकर बंसी बजाई है 5वीं धुन में, सब गोपियों का हृदय आकर्षित कर दिया। प्रभुपाद जी बार बार बहुत जगह बताते हैं कि ये भगवान की मुरली जो है ना, ये निरंतर बज रही है, निरंतर बज रही है, लेकिन सुनाई नहीं पड़ती हमको। दूसरी बात बताइए कि प्रभुपाद, सॉरी, कृष्ण भगवान की जो मुरली है वो केवल एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस नहीं है, वो सब जीवों के लिए आर्त पुकार है उनकी, चलो लौट चलो, इस भाव से भगवान मुरली बजाते हैं। एक लीलाओं का उसमें सहभाग है, लेकिन मूल भाव जो है वो जीव को भगवान पुकार रहे हैं अपनी मुरली के माध्यम से, ये समझना जरूरी है। अभी मुझे याद आता है कि मैं जब वृंदावन में था तो रात को 11 से सुबह 4 तक जगन्नाथ घाट, आपको पता होगा शायद, वो केशी घाट के बहुत आगे हैं, मतलब कम से कम 5 किलोमीटर दूर था हमारे घर से, हमारा घर भी जमुना किनारे था, उसके आगे भी 5 किलोमीटर जमुना किनारे पे जगन्नाथ घाट में वो अखंड कीर्तन चलता था, लेकिन वो 11 से 4 तक सुनाई पड़ता था। एक दिन हम लोग दर्शन करने गए तो पूछा कि आप रात को कीर्तन करते हैं, बोलते नहीं अखंड कीर्तन करते हैं हम लोग, वही भगवान के नाम का, तो फिर हमको रात को सुनाई क्यों पड़ता है, दिन में क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि दिन में हमारे इर्द गिर्द में बहुत शोर रहता है, इसलिए वो दूर की जो मंद मंद आवाज है वो सुनाई नहीं पड़ती। रात को हमारे इर्द गिर्द शांति हो जाती है तो वो दूर दूर की निरंतर ध्वनि जो है, निरंतर चलने वाली ध्वनि, वो हमको सुनाई पड़ती है। उसी प्रकार से जब तक हमारे हृदय में काम वासनाओं का और इच्छाओं का और बहुत द्वंद्वों का, अपराधों का शोर चल रहा है, तब तक वो जो पुकार है भगवान की मुरली की वो सुनाई नहीं पड़ती। जब हृदय शांत हो जाता है, भौतिक वासनाओं के उपलक्ष्य में शांति का अनुभव करता है, तब भगवान की मुरली की तान सुनाई पड़ने लगती है। इसलिए ये को जो निरंतर पुकार है वो सुनने के लिए भी योग्यता होनी चाहिए। तो इसीलिए ये सब मनुष्य जीवन में साधना, कृपा, सत्संग की व्यवस्था की गई है, ताकि ये शोर जो है ये शांत हो जाए और मुरली की तान भगवान की पुकार वाली सुनाई पड़े। और जब भगवान ने 5वीं धुन बजाई, वो केवल गोपियों के लिए होती है, 8 धुनों में से 1 धुन 5वीं, तब गोपियां, क्योंकि वो शुद्ध हृदय की थी, परम शुद्ध हृदय की थी, समर्पित थी, इसलिए मुरली की तान सुनते ही वो भाव विभोर हो गई। एक तरह से संभ्रमित हो गई वो, कॉमन जो बुद्धि होती ना वो भी खो बैठी वो। फॉर एग्जाम्पल वो काजल लगाया गालों पर, हाँ, कान का कुंडल हाथ में लगा दिया, अंगूठी में रूप में पहना दिया, गले का अलंकार जो है वो हाथ में पहन दिया, नीचे का वस्त्र ऊपर पहन लिया, ऊपर का वस्त्र नीचे पहन लिया। इस प्रकार से जैसे वो ब्रज में कहते हैं ना, बाबरी है गई, मतलब बावड़ी हो गई, मतलब पागल हो गई वो। क्या परिणाम हुआ उनके ऊपर? ये शुद्ध हृदय होने का एक और प्रमाण है, क्योंकि उनका हृदय शुद्ध था इसलिए ऐसे प्रकार के संभ्रमित अवस्था उनकी हो गई भगवान की मुरली के प्रभाव से। एक सुंदर कथा बताता आपको छोटी सी। जैसे मासुरी की धन सुनाई पड़ी तो एक गोपी जो है ना वो अपने घर में गाय का भूसा होता है ना चारा, वो निकाल के गाय को खिलाने जा रही थी। उतने में ससुर ने आवाज दी, अरे बहू थाली बनाओ, भोजन की थाली बनाओ। तो वो उसको रखकर किचन में गई और किचन में सासुर जी की रोटी दाल सब्जी का भोग बनाया उसने। और जब वो थाली लेकर जा रही थी ससुर को देने के लिए, तब मुरली की तान सुनाई पड़ी, तो उसने थाली जाकर गाय को खिलाई और भूसा ससुर को खिलाया। देखो ऐसा है बांसुरी का परिणाम। और उसके बाद वो सारी गोपियां जैसे भागने लगी तो सब उसके सासुएं, उनके ननदे, उनके पति, उनके जितने भी घर के ससुर लोग सब रोकने लगे उनको। लेकिन इतना वेग था उनके अंदर भगवान के पुकार को प्रतिसाद देने का, कोई रोक नहीं पाया उनको। क्या हमारे अंदर ऐसा वेग उत्पन्न हो सकता है कि भगवान पुकार रहे और भाग रहे हम सब छोड़कर? इसलिए गोपियों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसलिए महाप्रभु जी उनका सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में गौरव करते हैं। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया उस समय, कोई भी चीज जो बंधनकारक थी या बंधनकारक बन सकती थी वो उनको रोक नहीं पाई। हाँ, कुछ गोपियों को रोका गया, उसमें प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं बहुत सुंदर। वो कहते हैं कुछ गोपियों को रोकने में उनके पति देव वो ससुर जी सफल हो गए, तो उन्होंने क्या किया, अपना शरीर ही छोड़ दिया और दिव्य शरीर लेकर वो रासलय में प्रविष्ट हो गए। तो उसमें वर्णन ऐसा दिया है कि जितने हद तक जिनकी आध्यात्मिक स्थिति थी उतना उतना परिणाम उनके ऊपर हुआ और वैसा वैसा प्रतिसाद उन्होंने दिया। तो वो उन्होंने शरीर को छोड़ना भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, शरीर को त्याग दिया मतलब मर गई वो एक दृष्टि से उनकी आंखों के सामने, क्योंकि कैद कर दिया गया उनको कमरे के अंदर। तो वहीं से वो रास में प्रविष्ट हो गई, क्योंकि ये पुकार जो है ना वो शरीर की पुकार नहीं थी, ये आत्मा से मतलब परमात्मा से की गई पुकार है और आत्मा के लिए है वो, तो आत्मा उसको प्रतिसाद दे रही है। फिर वो सब लोग पहुंच गए बीच जंगल में। अभी देखिए जंगल कैसे होता है, हम लोग जंगल को तो पता नहीं हमको क्या होता है जंगल में, क्या होता है, एक तो अंधेरा होता है भयंकर घन दाट जंगल होता है बहुत घना, उसके अंदर कभी शेर आते हैं, कभी भालू आते हैं, कभी सिंह आते हैं, कभी चित्ता आता है, तो कभी सांप आते हैं जमीन पे ऊपर, कभी बिच्छू आते हैं, इतना डेंजर होता है। ऐसे घने जंगल में जब भगवान ने मुरली बजाई, तभी कोई आश्रम वगैरह बहुत सारे लोग नहीं थे उधर, कोई नहीं था उधर पूरे जंगल में, बीच रात का समय, वो दिन में भी जंगल बहुत भयंकर होते हैं, उसमें वो भय और सारे बंधनों को तोड़कर बीच जंगल में पहुंच गई। समझे आपको किसी ने घर पे दावत के लिए बुलाया, बहुत फोन करके बार बार बुलाया, प्रभु जी आ रहा पक्का, हाँ शाम को मेरे बच्चे का बर्थडे है, आ जाइए, और फिर आपको जाना नहीं था लेकिन वो 3-4 बार फोन किया तो आप जा रहे हैं उनके घर पे, और आप उनके घर में पहुंचे और फिर आपको पूछते हैं कैसे आना हुआ, मतलब हाउ यू केम, तो कैसा लगेगा आपको, अरे कितना संकोच होगा आपको कि आपने बुलाया और आप ही पूछ रहे क्यों आए। तो भगवान ने उनका स्वागत किया, स्वागत हो गोपियों आपका, क्यों आए आप बीच रात में यहाँ पर। तो वो इतनी दुखी हो गए उस समय, कहते हैं सुखदेव जी बताते हैं कि वो अपने पैरों के नाखूनों से जमीन को पृथ्वी को कुरेदने लगी, इतनी दुखी हो गई, वो आंसू बहने लगे, उनके काजल जो है वैसे वो रेखा बन के उनके शरीर से लेकर धार बनकर बहने लगे, कुछ बोल ही नहीं पाई, क्या बोलेंगे वो, इतना संकोच हो गया उनको कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप ही नहीं 5वें दिन बजाकर हमको आमंत्रण दिया था, हमारी आत्मा के वेग से भाग के हम लोग आए हैं सब लोग। और फिर बाद में फिर वो बोलते ही जा रहे हैं, ये कुछ बोल नहीं रही है, वो कह रहे हैं कि हर एक नारी को पतिव्रता होना चाहिए, पति कितना भी निर्बुद्ध हो, रोगी हो, हाँ आलसी हो, अकर्तृत्व अकर्तृत्ववान हो, मतलब कोई काम करने वाला योग्य व्यक्ति नहीं हो, ऐसे बहुत सारे व्यंजन दिए उनके लिए विशेषण। इसमें से कोई भी पति हो तुम्हारा, फिर भी पति को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि केवल पातिव्रत्य का पालन करके ब्रह्मलोक तक आप प्रवेश कर सकते हो, जैसे भगवान बड़ा प्रवचन दे रहे हैं। बाद में आप किसी की माँ हो, किसी की बहू हो, आपके कितने कर्तव्य हैं, ऐसे आपको कर्तव्य को छोड़ के आना नहीं चाहिए। अब वैसे भी यहाँ पर कितना भय है, अभी आपने देख, अगर वृंदावन का नज़ारा पूर्ण चंद्रमा का देखने आई हो, देख लिया ना, अभी जाओ आप, बहुत जल्दी चले जाओ संकट होने के पहले। फिर वो बोलना शुरू कर दी, मैं आपको बहुत बड़ा संवाद है उनका, एक भक्त का गौरव भगवान कैसे प्रकट करते हैं आम जनता के लाभ के लिए, उसका एक सुंदर संवाद है ये। बहुत सारे उधर संवाद है, लेकिन उसमें एक वो कहते हैं कि जिन उपाधियों की आप बात कर रहे हो, कि हम किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की ननदी है, जो भी आपने बताया, किसी की माँ है, ये सारे उपाधियां वस्त्रों की तरह है, और वो सारे उपाधियों के वस्त्र हम बहुत दूर छोड़ के आए हैं, पता भी नहीं कहाँ छोड़ के आए, उसको बहुत ही दूर छोड़ के बहुत अंतर काट कर हम बीच जंगल में आपके पास में आए हैं, और आप हमें उन्हीं वस्त्रों को दोबारा पहनने को कह रहे हैं। उस एक तरह से बोल रहे हैं कि जो पहना हुआ कपड़ा है, जब हम उतारते हैं उसको एक बार पहनने के बाद में, उसको दोबारा नहीं पहनते, उसको धोते हैं फिर पहनते हैं। तो उस प्रकार से बता रहे हो, जो हमने पहनकर उसको त्याग दिया है उसी को हम पहने, ऐसा आप बता रहे हो, वो जो नामुमकिन है। तो इस प्रकार के संवाद हुए, भगवान ने हर प्रकार से उनकी परीक्षा लिया, और फिर वो कहते परीक्षा में राघव गोपियां पास हो गई, फिर भगवान ने रासलीला का आरंभ किया। एक तरह से जीव कैसे परम शुद्ध होना चाहिए रासलीला का आस्वादन करने के लिए, उसका ये पूरा संवाद है। कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है उसके अंदर। अभी बंसी की तान सुनकर शिवजी भाग के आए, वो इतने व्याकुल थे, वो तुरंत उनको रास मंडल में प्रवेश करना था तो उनको रोका गया, ललिता विशाखा देवी आके रोका उनको, हे कहाँ जा रहे हो आप, रासलीला में जा रहा हूं, नहीं नहीं यहां पर केवल एक ही पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे जाना है अंदर, आपको स्त्री बनना पड़ेगा। उनको एक सेकंड का भी, एक लव मात्र का भी संकोच नहीं हुआ कि पार्वती क्या बोलेगी अगर मैं स्त्री बन जाऊंगा तो, मेरे सब भक्त लोग क्या बोलेंगे, नहीं, उनको इतनी आतुरता थी कि बोले बताओ कैसे बनना है। उन्होंने बोला मानसरोवर जाओ, वहां स्नान करो, फिर गोपी का शरीर प्राप्त होगा आपको। तो छलांग लगाते हुए जमुना जी को पार करते हुए मानसरोवर गए, जहां राधा रानी अश्रुओं से मानसरोवर बना हुआ है। राधा रानी ने मान करते हुए अश्रु बहाए थे, उष्ण उष्ण अश्रु, उसका एक सरोवर बना है पूरा। तो वहां पर उन्होंने स्नान किया, उनको गोपी शरीर प्राप्त हुआ, और वैसे ही छलांग लगाते हुए भाग के आए वो। जब वापस भाग के आए तो सब गोपी हंसने लगी उनको, क्यों हंसी, क्योंकि वो सांप गोपी नहीं बने, समझ में आपको आया, सर पे सांप, गले में सांप, भुजा में सांप, हाथ में सांप, कोई सुंदर स्त्री होगी बहुत अति सुंदर, और सब जगह सांप लगे हुए, तो आपको इतनी हंसी आएगी देखकर उसको। गोपी तो भाव उनके अंदर था इसलिए वो गोपी बने, सांप तो गोपी भाव में नहीं गए थे वहां पर, तो सांप को लेकर ही वो आए गोपी, तो इसलिए ललिता विशाखा और सब गोपी हंसी, और वो अप्रिशिएट करते हुए उनके भाव को उन्होंने अपने हाथ से श्री शंकर भगवान का गोपी श्रृंगार किया उन्होंने, और उनको हाथ पकड़कर बड़े प्रेम से सुंदर श्रृंगार किए हुए सुंदर शिव गोपी गोपेश्वर को वो रासमंडल के बीच में लेके गए, जहां पर राधा कृष्ण विराजमान थे, वहां उनके हाथों से चामर सेवा किया। चमर ढुलाए कबे हेरिबो मुख चंद्र, हर चामर के साथ दोनों के मुखमंडल का दर्शन कर रहे हैं। बहुत देर सेवा करने के बाद फिर उनको वापस ललिता जी ने हाथ पकड़कर रास के बाहर लेके गए। तो योग्यता का प्रमाण है ये। हाँ, फिर लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़कर भाग के आई वहां पर, जो कभी कृष्ण विष्णु का चरण नहीं छोड़ सकती है, किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ सकती, वो भी बंसी की तान सुनकर वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी में भाग के आई, उनको भी रोका गया। अभी क्या प्रॉब्लम है, तो वो स्त्री है, उनको कहा गया कि आपको गोपी भाव को स्वीकार करना पड़ेगा, आपको गोबर निकालना पड़ेगा, दूध निकालना पड़ेगा, गाय को साफ करना पड़ेगा, गौशाला को साफ करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, मक्खन निकालना पड़ेगा, सारे काम जो गोपियां करती हो आपको करना होगा। बोले नहीं, मैं तो लक्ष्मी हूं, वैकुंठवासिनी हूं, वैकुंठनाथ की पत्नी हूं। बोला आप है वैकुंठनाथ, आपको प्रणाम है हमारा। लेकिन तो लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं मिला उसके अंदर, क्योंकि लक्ष्मी जी अपना जो पद का जो भाव है उसको छोड़ नहीं सकी, वो अपना ऐश्वर्य भाव को छोड़ नहीं सकी, माधुर्य भाव स्वीकार करने के लिए उनका ऐश्वर्य भाव अटक गया बीच में। फिर वो तपस्या करने चली गई, कहते आज भी वो तपस्या कर रही है और आज भी उनको रासमंडल में प्रवेश नहीं मिला है। ये सब क्यों बता रहे हैं हम? लक्ष्मी जी की निंदा नहीं हो रही यहां पर, लक्ष्मी जी ने अपने उदाहरण को, मतलब भगवान ने लक्ष्मी जी को उपयोग करके हुए हमें ये मैसेज दिया है कि अपने ऐश्वर्य को लेकर आप भगवान के चरणों में रत नहीं हो सकते हैं, ऐश्वर्य भाव को त्याग करना होगा, हमारे पद के ऐश्वर्य को, हमारे अधिकार के मतलब प्रभाव के अटैचमेंट को, धन सौंदर्य बल ज्ञान इस प्रकार के जितने हमारे पास ऐश्वर्य है सब भगवान के दिए हुए हैं, उनको उनके प्रति अहंकार रखकर हम उनके पास रुजू नहीं हो सकते हैं। और लक्ष्मी वो प्रतीक है उसका, ऐश्वर्य का, इसलिए वो लक्ष्मी जी को उपयोग करके भगवान ने सामने किया, नकार दिया और उदाहरण सामने खड़ा कर दिया कि लक्ष्मी जी तक को प्रवेश नहीं है इसके अंदर, ऐसी सर्वोच्च लास लीला है, क्योंकि भगवान उस शुद्धतम जीव के प्रति परमोच्च प्रेम का अभी आदान प्रदान करने वाले हैं, उसके लिए जो योग्य है वही जाएंगे उसके अंदर। फिर जब गोपियों को लगा, क्योंकि भगवान कैसे थे, जब भी जैसे ही गोपियां सब पास हो गई परीक्षा में तो भगवान ने रास नृत्य आरंभ किया और हर एक गोपी के सामने एक कृष्ण बनकर प्रकट हुए। जितनी करोड़ों गोपियां थी, आज भी आप वृंदावन जाएंगे ना तो रास मंडल कहां से कहां तक फैला हुआ था इसका आप अंदाज नहीं लगा सकते। वो इमली तला भी रास मंडल में आता है, केवल बंसीवट के पास रास मंडल नहीं था, वो तो प्रतीकात्मक है, वो तो पूरा जमुना किनारा रास मंडल था, करोड़ों गोपियां नृत्य कर रही थी, वो करोड़ों गोपियों के साथ में हर एक गोपी के साथ में एक कृष्ण है। और ये गोपियों का एक और स्वभाव है, मग्नता, वो जब कोई सेवा करती है ना तो फूल भी बिन रही है, समझो उनको कहा गया कि पीला फूल बिनना है आपको, तो उनको पीले फूल के बिना कोई फल का दर्शन, फूल का दर्शन नहीं होता है, कोई भी फल फूल उनको आकर्षित नहीं करता है, जिस फूल की सेवा करनी है वही फूल को देखते हैं, उसी में मग्न रहते हैं, कहां मिलेगा वो। तो जब रास नृत्य कर रहे हैं इतने मग्नता से भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान को आनंद प्राप्त हो जाए तो उनको कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है उसमें, तो उनको क्या लग रहा है कि सबको छोड़कर मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। तो पहले तो वो ऋणी भाव में थी, कृतज्ञ भाव में थी, अरे बाप रे मेरी क्या योग्यता है, इतने सारे श्रेष्ठ गोपियों को छोड़कर मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। धीरे धीरे उसका रूपांतर क्या हुआ, मैं कुछ विशेष हूं, हो सकता है मैं बहुत सबसे सुंदर हूं, हो सकता है मेरे नृत्य में कोई ऐसी कला है जो उनको आकर्षित कर रही है, हो सकता है मुझ में कोई विशेष गुण होगा। धीरे 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 सूक्ष्म रूप से उनके कृतज्ञता के भाव का रूपांतर अहम में हो गया और सब गोपियों में एक साथ हुआ, क्योंकि सब गोपियां ये सोच रही है कि मैं बहुत स्पेशल हूं। तो तत्क्षण भगवान अंतर्धान हो गए, मतलब श्रेष्ठतम प्रेम का आदान प्रदान करते हुए भी जैसे अहंकार की बू आई भगवान वहां से अदृश्य हो गए। फिर गोपियों ने गोपी गीत गाया है, ऐसा सुंदर लीला है ये, लेकिन आम जनता उसको द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण गलत समझकर अपने जीवन का नुकसान कर लेते हैं। इसलिए आचार्यगण कहते भी हैं कि इन चर्चाओं का, इन लीलाओं की चर्चा सामान्य जनों के बीच में नहीं करनी चाहिए। इसलिए हम रासलीला के पहले क्या हुआ उसके बाद में क्या उतना ही चर्चा करते हैं, रासलीला में क्या वो चर्चा नहीं करते, क्योंकि वो तो जो परम हंस स्थिति में पहुंच गए हैं उन्हीं का विषय है, वो उसका आस्वादन नहीं कर, हमारे लिए जहर के समान है वो। अगर हमारे अंदर काम वासना, हम मगर मानते हैं कि नहीं है, लेकिन लवलेश भी अगर होगा ना तो यही लीला आपके लिए काम अनंग वर्धन के रूप में प्रस्तुत होगी, आपके काम को प्रदीप्त करेगी वो। और अगर परमहंस अवस्था में जीव हैं, काम वासना से मुक्त हो गए हैं, तो वो काम अनंग दमन लीला होगी उनके लिए, वो काम नष्ट हो जाएगा उनके अंदर बीज के रूप में भी, और प्रेम का ज्वाला जलेगी उनके अंदर, प्रेम के प्रदीप्त, प्रेम से प्रदीप्त हो जाएगा उनका हृदय। तो योग्यता होनी चाहिए, इसलिए वो आचार्यगण मना कर देते हैं। लेकिन गोपियों की श्रेष्ठता का वर्णन जरूर कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति इसका हकदार है। और एक बात जरूर हमको समझना चाहिए, ये जो बहुत गहरा विषय है, गहन विषय है, क्लिष्ट विषय है, परम योग्यता वाला विषय है जिसके बिना हम समझ नहीं सकते हैं, वो विषय जो इतना गहन, इतना गुप्त और इतना गोपनीय है, वो विषय वही कृष्ण और राधा रानी ने मिलकर सब जनता के लिए ओपन कर दिया है। क्योंकि वही कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो वो कृष्ण हरिनाम संकीर्तन जब करते हैं गौरांग महाप्रभु के रूप में, तो जो रास नित्य केवल गोपनीय गोपियों के लिए था वो आम जनता के लिए उन्होंने खोल दिया। कोई भी व्यक्ति आज के तारीख में कितना भी पतित अवस्था में क्यों ना हो, अगर उत्साह से हरिनाम संकीर्तन में भाग लेता है तो गोपियों को जो बीच रात में परम अत्युच्च आनंद का अनुभव हुआ, उसी आनंद का अनुभव हम सबको हो सकता है। कंडीशन केवल एक ही है, बीच में रहकर उत्साह पूर्णता से समर्पण की भावना से हरिनाम संकीर्तन में भाग लेना है हमको, तो वही आनंद बिना योग्यता के हमारे लिए प्रस्तुत किया गया है। अभी इसको और क्या कर सकते हैं, हाँ, जो यशोदा के लिए भी मुमकिन नहीं था, जो लक्ष्मी के लिए भी मुमकिन नहीं है, वो अगर हमारे लिए प्रकट किया जाए और हम उसमें भी रुचि न ले तो और भगवान क्या कर सकते हैं। फिर कार्तिक महीने को भेज दें, चलो कार्तिक महीने में थोड़ा सा कुछ करो। एनीवेज कार्तिक का गौरव तो अगाध है, अनंत है, हम लोगों को लाभ लेना चाहिए। और हमारा परम भाग्य है कि अधिक मास में भी शुरुआत बुधवार से हुई थी, और कार्तिक मास की शुरुआत भी बुधवार से हुई है। अधिक मास में भी 5 बुधवार थे और कार्तिक में भी 5 बुधवार आए हैं। देखो आप कैलेंडर में, मैंने सब स्टडी किया उसको बैठ के, क्योंकि ये कृपा में भी एक कृपा है भक्ति विधान में रहने से। क्या करना है आपको, आपको केवल बुधवार को मॉर्निंग में आना है, एक माला करेंगे तो एक लक्ष्य माला करने का लाभ ग्रहण करना है, प्रसाद ग्रहण करने का भी भाव से अनंत लाभ है इस महीने में। आइए प्रसाद ग्रहण कीजिए, दीपदान कीजिए, सब व्यवस्था करके रखेंगे। कल दिन भर हमारे स्टाफ लगे रहे उसके अंदर, माला वो दीपक लाना है, घी डालना है, सोक करना है उसको, सब जगह पोस्टर लगा दिए है, हाँ इतनी सारी व्यवस्था ऑलरेडी आपकी रेडी रखी है आपके लिए, आपको खाली आना है। तो आइए हर बुधवार को विशेष प्रभा जागृति के रूप में मनाइए, क्या जरूरत है 3 महीने में एक बार मनाने का, विशेष क्या है उसके अंदर, आपका आना ही विशेष है, जब आप आते हैं तो विशेष हो जाता है वो, उसमें और कोई विशेषता नहीं है, कोई अलग नाटक नहीं करते हम लोग यहाँ पर, कोई ड्रामा नहीं करते, कोई गीत नहीं गाते अलग, विशेषता यही है जब आप आते हैं तो ये विशेष हो जाता है, और आप आएंगे तो ये अति विशेष भी हो सकता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, को बंद करो उसको, हरे कृष्णा। तब इसके बाद तुरंत दामोदर अष्टकम का गायन होगा और सब लोग दीपदान करेंगे, फिर प्रसाद का वितरण होगा। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा।